اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے، یہ پیج نمبر ہے 89. اب تک ہم نے جو 9 چیپٹرز پڑھے اس میں آپ نے علم کی بات پڑھی کہ علم ایک چیز ہے، پھر صفات کی بات پڑھی، ذات کی بات پڑھی، اس کے بعد اس میں علم کے درجے بتائے گئے، پھر روح کے بابت بتایا گیا. یہ میں بہت ہی بریف سا صرف آپ کے حافظے میں ان چیزوں کا ایک وہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کی بابت پڑھا، اور ایک چیز ہم نے یہ پڑھی کہ بھئی اللہ رب کریم کے ذہن میں ایک پروگرام ہے اور وہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، ہم اس پروگرام کو وصول کرنے کے اہل بنائے گئے ہیں، اور اس پروگرام کے مطابق عمل کرنے یا عمل اس کے مطابق نہ کرنے پہ پوری طرح آزاد ہیں، اسی لیے مکلف ہیں. چاہے تو ہم اس پروگرام کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا سیکھ کے اللہ کی طرز فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو درجے مقرر کیے گئے ہیں طرز فکر اپنانے کے، ہم نے طرز فکر کی بات پڑھی کہ پیر و مرشد کی طرز فکر اپنانی ہے، امام سلسلہ کی طرز فکر سے روشناس ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سے آگاہ ہو کے پھر اللہ کی طرزوں کو سمجھنا ہے، اللہ کی مشیت کو جاننا ہے. یہ ہے ایک سالک کا اصل ٹارگیٹ یا اصل پروگرام. اب یہ جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے حواس کی رفتار. حواس سے کام لینا جو ہے وہ اس کی مقدار اور رفتار دونوں پہ ہوتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 5 حواس ہیں، حواس کی تعداد کہیں زیادہ ہے، ہمارے آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں. اب آپ وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا وقت بڑی جلدی گزر گیا، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ابھی تک وہ آیا نہیں، اتنا دیر ہو گئی. تو یہ کون سی حسیات ہیں؟ یعنی یہ بھی تو ایک حس ہے نا کہ وقت کے گزرنے کا مراقبہ کرتے ہیں. مراقبے میں آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی حد ہو گئی، ابھی تو 5 ہی منٹ ہوئے، اتنی وقت ہی نہیں گزر رہا. تو یہ کون سی حس کام کر رہی ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آپ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، آپ کو بہت جلدی یہ فیل ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے تاڑ رہا ہے یا مجھ پہ اس کی توجہ ہے. یعنی ہم توجہ کی لہروں کو، اب یہ کون سی حسیات ہیں؟ تو یہ بہت ساری حسیات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حواس کی مقداریں بھی ہیں، ان کی تعداد بھی ہے، اور اس کے بعد ان کی رفتار بھی ہے. تو یہ جو اب چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں اس طرف آپ کا ذہن متوجہ کیا جا رہا ہے. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا قیام اس کی بنیاد پہ قائم ہے. جیسے کوئی بھی آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے آپ بنیادیں بناتے ہیں، پھر وہ پلرز کھڑے کرتے ہیں. ہر چیز کا قیام بنیاد پر قائم ہے. مثلا مکان اس وقت تک مکان نہیں ہے جب تک مکان کی بنیادیں موجود نہ ہو، کرسی اس وقت تک کرسی نہیں ہے جب تک کرسی میں 4 ٹانگیں نہ ہو. انسانی عمارت جو ہے یہ 6 ستونوں پر کھڑی ہے، وہ جن کو آپ نے 6 لطائف، 6 تنزلات یا 6 مراحل پڑھا، اب ان کو 6 ستون کہا جا رہا ہے. وہ اتنے امپورٹنٹ ہے ان کو جاننا اور ان کو سمجھنا اور پھر بعد میں استعمال کرنا، کیونکہ 3 ہی درجے ہیں نا، علم ہے، پھر اس پہ فکر ہے، اور اس کے بعد عمل ہے. تو انسانی عمارت 6 ستونوں پر کھڑی ہے، اور یہ عمارت چلتی پھرتی ہے، اس میں زندگی ہے، اور زندگی 2 رخوں پر متحرک ہے، ایک شعور، دوسرا لاشعور. شعور اور لاشعور ایک دوسرے میں رد و بدل ہو رہے ہیں. شعور और लाशौर एक दूसरे में अदलते बदलते रहते हैं। आप नींद में होते हैं, फिर जागते हैं, जागते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये सोना जागना ये असल में शौर और लाशौर में रद्दो बदल हो रहा है। छह सतूनों में से तीन सतून बेदारी में काम करते हैं और तीन सतून ख्वाब में काम करते हैं। यानी ये जो छह लताइफ हैं इनकी हरकात में से तीन जो हैं ये बेदारी में, जब हम जागते हैं तब से काम शुरू करते हैं, जब हम सोते हैं तो फिर अगले तीन जो हैं वो काम करते हैं। इंसान के अंदर छह रोशन नुक्ते हैं, इन नुक्तों में से तीन की हरकत बेदारी में और तीन नुक्तों की हरकत नींद में होती है। हर आदमी सोने के बाद बेदार होता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो बेदारी के बाद जब उसकी आंख खुलती है, या यूं कहेंगे कि वो शौरी हवास में दाखिल होता है, तो वो नीम बेदारी की कैफियत में होता है। नीम बेदारी का मतलब है कि अभी आदमी पूरी तरह शौर में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो सोकर उठने के बाद बेदारी की पहली कैफियत में दाखिल होता है तो उसके ऊपर फिक्र व अमल का हजूम हो जाता है। फिक्र व अमल का हजूम होता है, इल्म का नहीं। यानी उस वक्त जो ही आंख खुलती तो ख्याल आने शुरू होते हैं और एक बाकायदा फिर ये करना है वो करना है, इन चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर जो ही हमारी आंख खुलती है, देखिए इस कदर बारीकी से हमारी फंक्शनिंग को हम ही को बताया जा रहा है कि जब हमारी आंख खुलती है, बेदार होते हैं, तो फिक्र व अमल का हजूम होता है। बेदारी के हवास में फिक्र व अमल की तर्जें यकजाई दौर पर दौर करने लगती हैं। उस वक्त जहन में सारी बातें यकजाई तौर पे होती हैं, अलग अलग भी नहीं होती। ये कैफियत इंसान के अंदर उस नुक्ते से शुरू होती है जिस नुक्ते का नाम लतीफा नफसी है। ये है लतीफा नफसी की पहली हरकत। अब आप बताएं कि आप इसको नाफ पे दे उंगली रख के कहेंगे जी ये तो यहां पे है। नहीं, ये यहां नहीं है। लतीफा नफसी की इस हरकत को अगर आप समझ लें कि जब हम बेदार होते हैं तो जो पहला फिक्र व अमल की लहरें हमारे अंदर दौर करती हैं, ये कैफियत असल में लतीफा नफसी की तहरीकात हैं। फिर नीम बेदारी के बाद एक दूसरा वक्फा शुरू होता है, वो एक मिनट के बाद शुरू हो जाए या दो घंटे बाद शुरू हो, दूसरा वक्फा, और उसमें होश और हवास में गहराई पैदा होती है। होश और हवास की इस गहराई से दिमाग के ऊपर जो खुमार होता है वो खत्म हो जाता है और ये वक्फा सरूर पर मुश्तमिल होता है। कभी सरूर की कैफियत बढ़ जाती है और कभी सरूर के बरक्स उसे कुल्फत कहते हैं। यानी कि सरूर के बरक्स एहसास को हजूर कलंदर बाबौलिया ने कुल्फत का एहसास कहा है। तो कभी सरूर मतलब कि बाज लोग सुबह सो के उठते हैं तो बड़े मजे में होते हैं, जब जूजू आंख खुलती है, जूजू शऊर में आता है, एक लुत्फ की कैफियत, एक सरूर की कैफियत में होते हैं। लेकिन बाज औकात वो कुल्फत की कैफियत होती है, वो पीछे तर्ज फिक्र की वजह से होता है। तो बहरहाल इस कैफियत में लतीफा कल्बी मुतहर्रक होता है और ये जो कुल्फत और सरूर है, किसी चीज का अच्छा लगना बुरा लगना, अच्छा लगना बुरा लगना, ये शुरू हो गया तो ये असल में लतीफा कल्बी मुतहर्रक हो गया। फिर सरूर के एहसासात के गहरे होने के बाद तीसरी कैफियत वजदान की है। वजदान बेदारी का तीसरा वक्फा है और वजदान में लतीफा रूही काम करता है। अब आप जरा सा गौर करें कि रात सोने से पहले जो वक्फा काम कर रहा है वो है लतीफा रूही। उसमें ये आता है ना, आदमी फील करता है कि जी मैंने ये कर लिया और ये रह गया, ये हो गया, ये मुझे ये अचीवमेंट्स हुई, तो अगर ये तर्ज फिक्र पीछे से, तर्ज फिक्र और चीज़ है, ये लताइफ का पूरा बयान हो रहा है कि ये जो छः लताइफ हैं, ये जो छः बेसिक सतून हैं जिनमें से तीन बेदारी में काम करते हैं और तीन नींद की हालत में, तो बेदारी के वक्फे का तीसरा लम्हा, तीसरा दर्जा, तीसरा जो जोन है वो है वजदान का। उसमें बंदा कैलकुलेट करता है कि मैंने क्या पाया, वजद से है ये लफ्ज वजदान। हम लोगों ने कहा ना बड़ा मजा आया, वजद में आ गया, मैंने उसका कलाम सुना और मैं वजद में आ गया। हम वजद सरूर की इंतहा को मानते हैं, हालांकि ये कुरान में वजद का आयलन फागना, वजद का दायलन फहदा, यानी वजद मैंने पाना। तो गोया जब हम कोई चीज़ पा लेते हैं तो वो हमारे इल्म का, हमारे हिसियात का, हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जाती है। इस कैफियत को वजदान कहा जाता है। जिस तरह बेदारी में तीन वक्फे हैं, इसी तरह नींद के भी तीन वक्फे हैं। जिस तरह कोई इंसान तीन स्टेजेस से गुजरकर बेदारी में दाखिल होता है, उसी तरह ये तीन स्टेजेस से गुजरकर नींद में दाखिल होता है। अब नींद के पहले वक्फे का नाम है गनूद। गनूद, गनूद की जिससे लफ्ज है गनूद, यानी के एक हल्की सी नींद की कैफियत है। गनूद में लतीफा सिर्री हरकत में रहता है। अब यही, और नींद की दूसरी हालत जिसे हल्की नींद कहना चाहिए वो लतीफा खफी की हरकत है। और फिर नींद की तीसरी हालत जब आदमी पूरी तरह गहरी नींद सो जाता है, उसमें लतीफा अख्फा की तहरीकात हैं। लतीफा अख्फा की तहरीकात, ये गहरी नींद में होती है। अब इसकी तरतीब ये नहीं कि ये मतलब कि जैसे चार चार घंटों पे मुश्तमिल नहीं है, ये मैं अर्ज कर देता हूँ, ये लम्हात में भी बदलती है। आपने दिन में भी नोट किया होगा कि खाना खाने के बाद बंदे पे खुमार सा आ जाता है। तो ये कैफियतें, यानी कि इन लताइफ की तहरीकात मुख्तलिफ, वैसे ये टोटल छः हैं और ये छः के छः बता दिए कि तीन बेदारी में ये लतीफ़ा नफसी, कल्बी और रूही जो हैं ये बेदारी में काम करते हैं। और मुराकबे में इसीलिए नींद की कैफियत को तारीख किया जाता है ताकि आप सिर्री, खफी और फिर अख्फा की कैफियतों में जा सकें। लेकिन हम मुराकबे में खुद को बेदार रखने में इतने कोशां रहते हैं कि हम खुद पे गहरी नींद के असरात को मुरतब नहीं होने देते। जिस गौर तलब बात यह है कि इन तमाम हालतों, अब ये गौर तलब बात यह कि इन तमाम हालतों के शुरू में इंसान पर सकूत की हालत जरूर तारी होती है। यानी जब हम गहरी नींद से हल्की नींद में आ रहे हैं तो बीच में एक वक्फा आएगा जिसे सकूत कहते हैं। सकूत मैंने साकत हो जाता है सारा सिस्टम। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी का गियर बदलते हैं तो वो पहले आप क्लच पकड़ लेते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियों में तो वो बस आप गियर को दबाते हैं तो क्लच ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो बिल्कुल ये सकूत की कैफियत का तारी होना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक हमारे मैकेनिज्म है और इसका फायदा कैसे उठाना है वो बता रहे हैं। जिस वक्त आदमी सोकर उठता है उस वक्त उसका जहन कतई तौर पर पुरसकून और खाली होता है। यानी जब आप लतीफा नफसी की हरकत शुरू होती है तो उसे पेशतर एक सकूत तारी हो जाता है। वो जहन कतई तौर पर पुरसकून और खाली होता है। उस वक्त आदमी आंख खोलते ही इधर उधर देखता है, वो आगे आ रहा है। इसी तरह दूसरी कैफियत में भी इंसान की तबीयत लम्हों के लिए जरूर साकत हो जाती है। यानी गोया दिन में कम से कम आप छह दफा इस सकूत के लम्हों से गुजरते हैं। कानून ये है कि एक हालत से दूसरी हालत में दाखिल होने के लिए सकूत का होना जरूरी है। ये एक तरह की डिमार्केशन भी है और एक तरह की उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जरूरी है। جس طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح غنودگی کے وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت طاری ہوتا ہے، اور چند لمحے گزر جانے کے بعد حواس کا یہ سکوت بوجھل ہو کر غنودگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دیکھیں کہاں سکوت کہاں آیا، حواس پہ. حواس کو ساکت کرنا ہے، حواس ساکت ہوں گے تب جا کے ہم غنودگی میں داخل ہو سکتے. ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات کی ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہے. یہ جو نیند کا ہلکی نیند ہے اس کی بھی شروعات ساکت لمحات سے ہوتی ہے، اور پھر گہری نیند کے ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، اور یہی غلبہ گہری نیند کہلاتا ہے. یعنی حواس پھر اس زون سے دوسرے زون میں، یعنی گاڑی ٹاپ گیئر میں چلی جاتی ہے تو جسم اس وقت پھر ساتھ نہیں دیتا. بیداری ہو یا نیند، دونوں کا تعلق حواس سے. اس کو سمجھ لیں کہ حواس حواس کرتے ہیں، حواس ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے. ایک حالت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور دوسری حالت میں رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن حواس کی نوعیت تبدیل نہیں ہوتی. نوعیت نو سے، یعنی اس کی جینر، اس کی ٹائپ، اس کی قسم نہیں چینج ہوتی. دیکھنا بیداری میں بھی ہے تو نیند میں بھی ہے، سونگنا اگر بیداری میں ہے تو نیند میں بھی ہے، چھونا اگر بیداری میں ہے تو نیند میں بھی ہے. یعنی نوعیت نہیں تبدیل ہوتی، چھونے کا عمل دونوں جگہ یکساں کام کرتا ہے. بیداری ہو یا خواب، دونوں میں ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں. قبیل کے لفظ سے قبیلہ، یعنی ایک جیسے لوگ، ایک قسم کے. یہ قسم کے لیے قبیل کا لفظ ہے. بیداری اور نیند کے لیے دماغ کے اندر دو خانے ہیں. اب دماغ آ گیا، ذہن نہیں لفظ استعمال ہوا. یہاں پہ ہمارا یہ گرے میٹر، فزیکل جو برین ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر دو خانے ہیں. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دماغ ہیں. ایک دماغ میں حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے، اور دوسرے دماغ میں حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے. مفہوم یہ ہے، ایک ہی حواس بیداری اور نیند میں رد و بدل ہو رہے ہیں، اور حواس کا رد و بدل ہی زندگی ہے. جب دماغ کے اوپر کسی ایک قسم کے حواس کے متعلق سکوت طاری ہو جاتا ہے تو دوسری قسم کے حواس متحرک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ سن لیں. بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے. یعنی جب ہم پلک جھپکتے ہیں تو ہماری پلک جو ہے ڈیلے کو ایک چوٹ لگاتی ہے، اس کو ایک دباؤ میں لاتی ہے، اس پہ ایک دباؤ کریٹ ہوتا ہے. یہ جو پلکیں ہم پٹ پٹاتے ہیں اس سے اصل میں اطلاعات شعور کو ڈسپیچ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی احساس نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے. اس کی مثال کیمرے سے دی جا سکتی ہے. کیمرے کے اندر فلم ہے، گلاس بھی موجود ہے اور گلاس کے سامنے مناظر بھی ہیں، لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹر میں حرکت واقعہ نہ ہو تو فلم پر تصویر نہیں بنتی. بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈیلے پر اگر پلک کی ضرب نہ پڑے تو مناظر دماغ کی اسکرین پر فلم نہیں بنتے. یعنی تصویر ساکت دکھتی ہے لیکن پلک جھپکتی ہے تو دماغ اس کو ایز اے فلم बेदारी में देखने का दूसरा कानून। पहला कानून ये बताया गया कि जब इंसान सोने के बाद बेदार होता है तो फौरी तौर पर उसे कोई ख्याल आता है, और ये ख्याल ही बेदारी और नींद के दरमियान हद फासल है, यानी ये डिफ्रेंशिएट करता है, उसमें फर्क कर देता है। जब इस ख्याल में गहराई पैदा वाकया होती है तो पलक झपकने का अमल शुरू हो गया। जब ख्याल में गहराई पैदा होगी तो आपकी पलक झपकेगी, और पलक झपकने के साथ ही दिमाग की स्क्रीन पर मनाजर मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। अब देखने का तीसरा कानून, इल्मी हैसियत में दिमाग एक इत्तला मौसूल करता है और दिमाग उस इत्तला में मानी पहनाता है। पलक झपकने के अमल के साथ इंसानी दिमाग में जो अक्स मुंतकिल होता है उसका वक्फा 15 सेकंड है। किसका? पलक झपकने के बाद जब जो अक्स हमारे दिमाग से जहन में मुंतकिल हुआ उसका वक्फा 15 सेकंड है, वो 15 सेकंड अंदर लिंगर करता है। अभी 15 सेकंड नहीं गुजरते कि एक दो या जायद मनाजर पहले मंजर की जगह ले लेते हैं, और ये सिलसिला तसलसल के साथ कायम रहता है। ये तीन कानून बताने के बाद इस्तरखा का, अब ये इस्तरखा क्या चीज है? ये एक मश्क है कि बेदारी में आंख का ताल्लुक आंख के डेलों और पलकों से बराह रास्त है, यानी बेदारी में हम हर वक्त पलकें झपकते रहते हैं, हमें शऊर ही नहीं है इस चीज का, है ध्यान ही नहीं है, लेकिन आंख के डेलों के ऊपर पलकों की जर्ब इंसानी कैमरे का वो बटन है जो बार बार तस्वीर लेता है। अगर आंख के डेलों के ऊपर पलक की जर्ब ना पड़े तो आंख के अंदर मौजूद अज़ा काम नहीं करते। आंख के अंदर मौजूद अज़ा यानी उजलात, यानी हमारे आई के मसल्स, रेटिना के मसल्स और ऑप्टिक नर्व्स के मसल काम ही नहीं करते अगर ये पलके ना झपके। ये इतना इंपॉर्टेंट, आंख के अंदर मौजूद आसाब की हिस्से यानी आंख के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो हिस्से उस वक्त काम करती हैं, यानी उनके अंदर करंट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तब दौर करती हैं जब उनके ऊपर पलक या आंख के पर्दों की जरब पड़ती रहे। अगर आंख की पलक को बांध दिया जाए और डेलों की हरकत रुक जाए, दो काम, एक तो पलक को झपकने से बाज कर लें और आंख के अंदर के डेलों की हरकत को रोक दें, आंख के डेले की हरकत रुक जाए और पलक का झपकना बंद कर दिया जाए तो नजर के सामने खिला आ जाता, मनाजर की फिल्म बंदी रुक जाती है। अमले इस तरखा में इसी बात की मशक कराई जाती है कि आंख के डेलों की हरकत रुक जाए और आंख के पर्दे की जरब डेलों पर ना पड़े, ताकि बेदारी की नजर ख्वाब की नजर में मुंतकिल हो जाए। नजर जो है वो जहन की वर्किंग है, निगाह जो है वो जहन काम कर ले रहा है, तो इन आसा को जब हम बांध देते हैं कपड़े से, पट्टी से या अपने इरादे की ताकत से, आप गौर करें कि किसी भी यक्सु बंदे की आंखें जो हैं वो पटपटाएंगी नहीं, उसकी पलकें कम झपकेंगी या उसके डेले अंदर से कम हिलेंगे। यक्सु बंदे की ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आप देखें ना किसी बंदे की आंखें अंदर से बहुत ज्यादा मुतहरक हैं या उसकी पलकें बार बार पटपटा रही हैं तो आप समझ जाएं कि ये बंदा ज़हनी तौर पे ज्यादा, यानी उस दर्जे पे यकसू नहीं है। जब हम ख्वाब देखते हैं तो आंख के डेलों पर पलक की जरब नहीं पड़ती, आंख के डेलों पर पलक की जरब से यानी खुलने और बंद होने के अमल से मनाजर का अक्स दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल होता रहता है। यहाँ पे जो मौजूदा साइंस है वो रैपिड आई मूवमेंट REM रीम कहते हैं उसे, रैपिड आई मूवमेंट यानी गहरी नींद में वो कहते हैं जी कि इंसान के डेले दाएं बाएं मूव करते हैं। ये असल में कमजोरी की वजह से होता है। जब इरादे की अंदर वो ताकत जो है वो इरादी तौर पे निगाह से काम नहीं ले रही, तो वो फिर उसके असरात यहाँ बॉडी, फिजिकल बॉडी पे मुंतकिल हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, जब हम ख्वाब देखते हैं तो आंख के डेलों पर पलक की जरब नहीं पड़ती। आंख के डेलों पर पलक की जरब से यानी खुलने और बंद होने के अमल से मनाजर का दिमाग की स्क्रीन पर मुंतकिल होता रहता है। लतीफा नफसी की मुसलसल हरकत से ये सिलसिला जारी रहता है, यानी ये जो पलकों की पटपटाहट है या डेलों की हरकत है, ये लतीफा नफसी की मुसलसल हरकत है। लतीफा नफसी की मुसलसल हरकत का सुराग ये, तो ये सिलसिला जारी रहता है। लतीफा नफसी की रोशनियां जब किसी तरफ मिलान करती हैं, यानी उनका रुझान उस तरफ होता है या उस तरफ को वो फ्लो करती हैं, तो तमाम महसूसात भी उसी की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। ये है राज। लतीफा नफसी का ध्यान चूंकि बाहर की दुनिया में है, लिहाजा उसका मिलान भी बाहर की तरफ है, तो हमारे सारे हवास और हिसियात और महसूसात भी उसी तरफ मतवज्जो रहते हैं। अब हिसियात में सबसे लतीफ हिस जो है बसारत है, क्योंकि बसारत सबसे लतीफ हिस है, इसलिए लतीफा नफसी की रोशनी में सबसे पहले मुतासिर होती है। और ये रोशनी सबसे पहले ख्याल से रूशनास कराती है। ये है ख्याल से हम कैसे वाकिफ होते हैं, लतीफा नफसी की रोशनी की वजह से। पहले पहल जब कुव्वते बासरा, बासरा भी बसीर से, बसर से, बसीर उससे है, फिर आगे बासरा यानी के देखने की सलाहियत, जब कुव्वते बासरा हरकत करती है तो निगाह खारिज की चीजों में को दाखिल में और दाखिल की चीजों को खारिज में देखती है। ये देखें जरा, चूंकि आप पैरासाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चूंकि आप और हम रूहानियत की सबसे आला साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, रूहानी साइंस की अव्वलीन किताब है लौह कलम और उसकी शरह पढ़ रहे हैं, ये सआदत है हमारी। तो ये बात साथ साथ नोट करें कि यहाँ हर जुमला जो है वो हमें पिछले से अगले दर्जे पे ले जा रहा है कि निगाह जब हरकत करती है तो निगाह खारज की चीजों को दाखल में देखती है, और जो दाखल की चीजें हैं ये बाहर खारज में दिखती हैं। ये दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। खलासा कलाम ये है कि इंसानी जहन हर हालत में आईने का काम अंजाम देता है। अब क्लियर हो गया कि पीछे उस आईने की मिसाल क्यों दी गई थी। और रूहे इंसानी इसी आईने में ख्यालात, तवाहमात और तसव्वुरात को मुजस्सम, मुजस्सम यानी जिस्म के साथ शक्लो सूरत में देखती है। लतीफा नफसी की रोशनियां पूरी कायनात को देखती हैं और पूरी कायनात में फैली हुई हैं। इन रोशनियों में किसी वहम, ख्याल या तसव्वुर का बाहर निकल जाना मुमकिन नहीं है। सारी कायनात पर यह रोशनी एक दायरे की सूरत में मुहित है। अब यह बात जाहिर है कि जिस बंदे को मुशाहिदाती तर्ज़ें हासिल हैं वही बता सकता था, और हजूर कलंदर बाब औलिया ने फरमाया और हजूर मुर्शिद करीम उसकी शरह कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि वो हमें और आपको मुशाहिदाती तर्जों के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हम लतीफा नफसी की रोशनियों की मदद से पूरी कायनात को देखने की सकत और इस्तेआत रखते हैं। रोशनियों का यही दायरा जवैया है। जवैया से मुराद लतीफा नफसी और लतीफा कल्बी है। जवैया की रोशनियां ज़ात इंसानी को लामित नाही हदों तक वसी कर देती हैं। जवैया को मुतहरक करने और जवैया की तमाम वसतों से बाखबर रहने के लिए नींद के ऊपर कंट्रोल हासिल करना जरूरी है, और रूहानी तालीमात में इस कोशिश का पहला सबक दिन और रात के अंदर 21 घंटे 20 मिनट जाग कर पूरा किया जाता है। यानी 24 घंटों में 2 घंटे 40 मिनट नींद के लिए काफी हैं, ये यार्ड स्टिक है। लेकिन यकदम मत कीजिएगा, इसे बहुत ग्रेजुअली किया जाता है। अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो 6 करेंगे, 6 करते हैं तो 5 करेंगे, 5 करते हैं तो 4.5 करें, फिर उसे 4 पे लाएं, फिर उसे कम करके 3.5 पे लाएं। इस और ये मतलब एक एक ड्यूरेशन महीनों पे होनी चाहिए ताकि तबीयत उसकी आदी हो जाए। तो ये यकदम नहीं कर लेना कि लगातार आपने जागना शुरू कर दिया कि जी बस मैंने 2 घंटे 40 मिनट, बस आज से मैं रूहानी हो गया। इस तरह रूहानी नहीं होंगे आप, मखबूतुल हवास हो जाएंगे, क्योंकि हवास पे अभी कंट्रोल नहीं है, इरादे की ताकतें भी साथ चाहिए। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। तो बेदार रहने की समल के साथ साथ नींद के ऊपर कंट्रोल हासिल होने के बाद दूसरा सबक, पलक झपकाए बगैर तारीकी में नजर जमाना है। यानी एक तरफ आप नींद कम करते हैं और दूसरा अंधेरे कमरे में किसी अंधेरे नुक्ते पे, काले नुक्ते पे नजर जमाने की प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी घंटों के हिसाब से की जाती है। यानी कि कम अज 5-10 मिनट से शुरू की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जाती है, ताकि आपको डेलों की हरकत पे कंट्रोल हासिल हो जाए, इरादे की ताकत को इस दर्जे बढ़ाया जाता है। कानून आप हजरात समझ चुके हैं कि देखने का अमल डेलों के ऊपर पलकों की जर्ब से वाकया होता है। 21 घंटे 20 मिनट तक जागने के अमल को तलवीन और तारीकी में पलक झपकाए बगैर नजर जमाने को इस्तरखा कहते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में हवास की रफ्तार को कंट्रोल करने की बाबत पढ़ा। अभी इसकी फर्दर जुज़ियात इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया माशाल्लाह आपका। ठीक हो गया जी?